ஓம் சாந்தி. சங்கம் யுக் பர் ஹம் சபி பாபா கே பஹத் பஹத் பாக்யவான் பச்சே ஜின்கோ டைரக்ட் பாக்ய விதாத்தா கே த்வாரா அநேக பிரகார் கீ விதியா ஔர் விதான் சமஜ்னே ஔர் ஜான்னே கோ மிலே ஹே. ஹர் பாபா கீ முரளி கே அந்தர் அநேக பிரகார் கீ விதியா ஆப் ஹம் சப் சுன்தே ஹே. ரோஜ் ஹி பாபா யே கஹ்தே ஹே ஹமாரா யே ஜ்ஞான் ரித்தி சித்தி வாலா நஹீ ஹே, சமத்கார் நஹீ ஹே, லேகின் கோயி பி சித்தி கே லியே குச்ச ந குச்ச விதியோ கோ அப்னானா ஜரூரி ஹே. அகர் கோயி பி பாத் மே சித்தி அர்த்தாத் சஃலத்தா நீ மில் ரீ ஹே தோ உஸ்கே காரண கோ சமஜ்னா ஜரூர் கோயி ந கோயி விதி யதார்த்த நீ ஹே, இஸ்லியே சித்தி நீ மில் ரீ ஹே. க்யோங்கி ஹரேக் பாபா கே பச்சே கோ ஜனம்தே ஹி ஏக் வரதான் மிலா ஹே. ஹர் ப்ராஹ்மண ஆத்மா ஜிஸ்கா சஃலத்தா ஜனம் சித்த அதிகார ஹே. இஸ் ப்ராஹ்மண ஜீவன் கி டிக்ஷனரி கே அந்தர் அசம்பவ சப்த ஹி நீ ஹே. சப் குச சம்பவ ஹே, லேகின் விதி யதார்த்த ஹோனா அவசியக் ஹே. அகர் விதி கே அந்தர் குச் பி அப்னி மன் மத் யா பர் மத் மிக்ஸ் கர் தி தோ சித்தி கை பார் பஹுத் தூர் அனுபவ ஹோதி ஹே, சஃலத்தா மிலேகி யா நஹி. இஸ்லியே ஆஜ் இஸ் விஷய கோ தீன் சார் தின் சே ஹம் முரளியோ கே நீச்சே வரதான் ஸ்லோகன் மே ஔர் ஆஜ் பி அவ்யக்த் பாபா கி முரளி மே இஸ் பாத் கோ அண்டர்லைன் கியா ஹே. சுனா ஹே ஆப் சப்னே कि बच्चे विधि से सिद्धि मिलती है. ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनसे हर प्रकार की सिद्धि मिलती रहे, हर सिद्धि की विधि है, और कई बार हम उन विधियों को जानते भी हैं, समय पर याद नहीं आती, बुद्धि में रहती है लेकिन समय पर यूज नहीं होती. तो आज इस विषय को इसी तरह से विचार किया है कि संगम युग पर कोई भी ब्राह्मण आत्मा मेहनत और मुश्किल का अनुभव न करे, क्योंकि बहुत सहज मार्ग. बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुमने तो बहुत आधा कल्प मेहनत की है, बहुत भटके हो, बहुत धक्के खाए हैं, बाबा के मिलने के बाद भी अगर कोई मेहनत और मुश्किल का अनुभव हो रहा है तो कारण क्या. इसलिए हम सब बाबा की बताई हुई विधियों को स्मृति में लाएं, एक बार उसको रिवाइज करें. वैसे तो जब भी कोई मुरली चलती है तो वरदान में, स्लोगन में, विशेष करके आप देखेंगे कि बाबा ऐसे ही तथास्तु कह करके वरदान नहीं देता. जैसे भक्ति के अंदर वरदान दिए गए हैं, दिखाया गया है, उस वरदान के पीछे कुछ विधि है, कुछ उसका आधार है, और उसके बाद भव है. सीधा ही बाबा ने कह दिया अमर भव, सफलता मूरत भव, संतुष्ट मणि भव, या जितने भी वरदान हैं उनके पीछे उसकी विधि और उसका आधार अवश्य बताया गया है. जब से वरदान बनाने की सेवा मुझे दी गई, मुझे याद है 88 में बाबा अव्यक्त बाबा एक बार हम मधुबन निवासियों से विशेष मिलने के लिए आए थे. कारण तो था, बाबा ने ही संदेश भेजा कि मधुबन के बच्चों से बाप मिलने गए. तो मुझे याद है 20 मार्च 88 को बाबा की पधरावनी ओम शांति भवन में हुई, और उस समय हम मधुबन निवासी केवल 200 थे. उस समय ज्ञान सरोवर, शांतिवन, हॉस्पिटल कुछ भी विस्तार नहीं था, तो बाबा ने मधुबन निवासियों को आमंत्रित किया। उसमें हम 120 भाई थे और 60-70 बहनें थीं। तो जब बाबा ओम शांति भवन में आए और शाम को 6:30-7 बजे बाबा की पधरावनी हुई, उसके बाद हम सबके नंबर लगे। दादी जी ने कहा अभी आप सब दिल भर करके बाबा से मिल लो। तो रात को जब मिलना शुरू हुआ तो सवेरे 7 बजे 12 घंटे के बाद मैं बाबा से मिलने गया लास्ट में, क्योंकि मेरी सेवा थी, जो बाबा बोलते थे मैं लिखता था। और उस पूरी रात में बाबा केवल 120 भाइयों से ही मिला, बहनें रह गई। बाबा ने कहा बहनों से बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी तक बाबा का वो बाद वाली बात अभी तक पूरी नहीं हुई। तो 120 भाई जब मिले तो बाबा ने इतने अच्छे अच्छे एक एक को वरदान दिए, कोई को आधा घंटा, कोई को 20 मिनट, बहुत टाइम दिया। और उसमें इतने सुंदर ढंग से बाबा ने एक एक की विशेषताओं का वर्णन किया, एक एक को वरदानों से भरपूर किया। तो सवेरे दादी जी ने मुझे बुलाया, कहती है कि आज रात भर बाबा ने तुम लोगों से क्या बातें की, बहने क्यों रह गई। दादी बाबा ने बहुत वरदान दिए। कहती क्या वरदान दिए हैं, तुम टाइप करके ले आओ। तो जब वो वरदान सारे हमने 120 टाइप किए तो एक बहुत सुंदर किताब जितना बन गया, बहुत ज्यादा हो गए। इतना बोला है बाबा ने, क्या करोगे। तो मेरे मुख से निकला, दादी ये जिस भाई को बाबा ने कहा है, वरदान दिया है, उसको टाइप करके फोटो के साथ दे देते हैं, वो अपने अपने ऑफिस में लगा लेगा और पढ़ता रहेगा, खुश होता रहेगा। कहती ये तो बहुत अच्छी सेवा है, बड़े करो, लेकिन ये केवल आप लोगों के लिए बाबा ने वरदान नहीं दिया है, ये सारे ब्राह्मणों को दिया है। और इसको ऐसे सेट करो कि मुरली के नीचे सब जगह पर वरदान जाए। तो मैंने कहा इतना बड़ा वरदान एक एक का मैं अगर मुरली के नीचे लिखूंगा तो मुरली छोटी हो जाएगी। तो कहती नहीं, इतना नहीं लिखना है, लिखो 4-5 लाइन में ही, लेकिन वरदान का रूप दो। तो जब वो 120 वरदान को सेट किया 4-5 लाइन, तो उसमें से एक के वरदान से 2 या 3 बन गए। और पूरा एक साल तक 1989 मैं समझता हूँ हो गया था, 89 में पूरा एक साल तक हमने एक भी वरदान रिपीट नहीं किया, वही 120 वाले वरदान ही सेट किए मुरली के नीचे। और जब पूरा हो गया तो मैंने कहा दादी वरदान जितने बाबा ने दिए थे मैंने सब लिख दिए। तो कहती है बस इतने ही वरदान बाबा ने दिए हैं। दादी रूरियान बहुत अच्छी करती थी, ये वरदान तो सभी ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगते हैं, सब जगह से पत्र आते हैं कि दादी इससे बहुत अच्छी मदद मिल रही है और इससे बहुत विधियां नई नई मिलती हैं सीखने को, इसलिए ये बंद नहीं करना। तो मैंने कहा मैं अभी कहां से लाऊं। तो फिर कहने लगी जो 69 से अभी तक बाबा ने बोला है वो सब मुरलियों की स्टडी करो और उन सब मुरलियों से वरदान निकालो। तो ये जो पहली लाइन है भव वाली, ये वरदान की बनाई हुई लाइन है, बाबा के शब्दों में नहीं है, लेकिन भव की जो परिभाषा है, स्पष्टीकरण है, वो बाबा के शब्द ही हैं। जो 4 लाइन आता है उसमें कोई एडिशन नहीं है, करेक्शन भी नहीं है, लेकिन पहली लाइन को सेट करने के लिए मेरा विचार चला कि बाबा ऐसे ही किसी को वरदान नहीं देता है, कुछ विधि बताता है, उस विधि के बाद सिद्धि होती है। तो इसलिए अगर आप पहली लाइन को देखेंगे तो उसमें मोस्टली अधिकतर तीन बातें स्पष्ट की गई हैं। जिस बात को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका कुछ आधार है, उसकी कुछ विधि है, वो करेंगे तो बनेंगे। तो इसलिए यथार्थ विधियां बाबा ने जो सुनाई हैं, जैसे आपको बाबा के शब्द ही मैं वर्णन कर रहा हूं, बाबा कहता है बच्चे मांगने से मरना भला, बाबा से भी मांगो नहीं, मांगने से कितना मिलेगा। लेकिन अगर बाबा की मदद चाहिए तो उसकी विधि है हिम्मत, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप, हिम्मत आपकी तो बाबा की मदद है। अगर हम बाबा की मदद चाहते हैं तो हमें पहले हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे बाबा मदद नहीं देगा। तो ये विधि है और उसकी सिद्धि है मदद। ऐसे ही अगर हमें सफलता चाहिए, विजय चाहिए हर चीज में, जैसे परसों के वरदान में था कि अगर आप बच्चे सेवा में सफलता चाहते हो तो मन वचन कर मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं का बैलेंस रखो, तीनों सेवाएं साथ साथ हों तो सेवा में सफलता मिलेगी। हम सब सेवाओं के क्षेत्र में हैं और हर एक चाहता है ये जो हमने सेवा की उसमें सफलता मिलनी चाहिए। हमने इतने लोगों को कोर्स कराया, इतने लोगों को ज्ञान सुनाया और कभी इतनी बड़ी प्रदर्शनी मेला किया, अगर उसमें 5-10 स्टूडेंट भी नहीं निकलते हैं तो लगता है कि शायद हमारी मेहनत ऐसे ही चली गई। फिर भी बाबा आदत देता है बच्चे मेहनत ऐसे नहीं जाती, बीज तो पड़ गया, फल निकलेगा, समय लग सकता है। लेकिन विधि यथार्थ क्या है उसकी विधि बाबा ने उसमें बहुत सुंदर सुनाई कि मनसा को पावरफुल बनाओ। जितनी मनसा पावरफुल है मनसा से उसको सकास देने की सेवा करो। जिस आत्मा को कोर्स करा रहे हो उसके प्रति बहुत अंदर की शुभ भावना है, शुभ चिंतन है बाबा का बच्चा बने। वाणी नॉलेजफुल है, मनसा पावरफुल है और कर्मणा के अंदर व्यवहार के अंदर लॉफुल स्टेज है, रमणीक स्टेज बाबा ने बोला, लेकिन उसमें बहुत लॉफुल है, बहुत प्यार है, दिखाई देता उसको ये अपने हैं, इनका कोई मेरे प्रति स्वार्थ नहीं है, ये निस्वार्थ प्यार है इनका। तो इस प्रकार का अगर एक विधि यथार्थ है मन वचन कर्म की, मनसा वाचा कर्मणा की, तो सेवा की सफलता अवश्य मिलेगी। ये बाबा ने जैसे अंडरलाइन किया है। और इस विधि को हम छोड़ करके अगर केवल ज्ञान सुना रहे हैं, केवल वाणी के द्वारा हम किसी को बहुत अच्छी अच्छी तरह से समझा करके, कहानियां सुना करके, इधर की बातें उधर की बातें रमणीक ढंग के सुना करके अपना बनाते हैं, बाबा का बनाते हैं, नजदीक लाते हैं, तो थोड़े दिन के बाद जब धारणाओं की बात आती है तो खिसक जाते हैं। अधिकतर देखा गया है कि किसी भी क्लास के अंदर कोई भी प्रोग्राम से अगर 50-60-100 जुड़ते हैं तो थोड़े दिन चल करके 3-6 मास उसके बाद धीरे धीरे वो क्लास छटने लगता है, कम हो जाते हैं, बहुत गिने चुने बचते हैं। उसका मूल कारण यही है कि सेवा करने वाली आत्माओं को ये बहुत अच्छी विधि युक्ति जो बाबा ने बताई है उस विधि का प्रयोग करना है। अब हम संगठन में रहते हैं और संगठन अगर एक नहीं है, दिखाई देता है कि ये कहते तो अलग हैं लेकिन इनकी कथनी और करने में, इनके व्यवहारिक जीवन में अंतर है, तो सेवा में सफलता नहीं मिलती। इसलिए बाबा हम बच्चों को कई बार ये विधियां बताते हैं, जहां भी आप रहते हो, संगठन के बीच में रहते हो, संगठन को एकता के सूत्र में बांध करके चलना, संगठन में सबको मिला करके चलना, संगठन का किला मजबूत हो जाए उसकी विधि है। और वो विधि अगर यथार्थ रीति से प्रयोग की जा रही है तो संगठन की दीवार में कहीं भी क्रेक नहीं आएगी। क्या विधि है उसकी? विधि है कि जो आत्माएं संगठन के बीच में रह रही हैं, उनके अंदर विशेषताएं हैं, कोई न कोई विशेषता है, और अगर उस विशेषता को देख करके, विशेषता को ग्रहण करके हम चलते हैं, और साथ साथ जैसे हमारी दादियों ने एक बहुत अच्छी विधि से हम सबको बांध करके रखा, और वो थी उनका विश्वास, उनका फेथ। यूनिटी का आधार फेथ और लव है। जितना विश्वास है, जितना आत्मिक प्यार है, उतना संगठन एकमत रह सकता है, लेकिन गुण ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। अगर हम हमेशा अपने साथियों के कमियों को देखते रहेंगे या उनकी कमियों का इधर उधर विस्तार करेंगे, वर्णन कर देंगे, तो संगठन टूटेगा। एक न एक दिन वो किनारा करके आपसे चला जाएगा। तो विधियां अगर यथार्थ हैं तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। अगर हम संतुष्ट रहना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं, तो उसकी भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं। संतुष्टता वरदान है, लेकिन संतुष्टता के वरदान की विधि है कि अगर बच्चे संतुष्ट रहना है तो अपने आप को बहुत भरपूर करो, हर प्राप्ति से भरपूर करो। कोई भी अप्राप्ति इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव होगी तो संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, सूक्ष्म खजानों से, अविनाशी खजानों से अगर आत्मा भरपूर है, उसका चिंतन है, उसका मनन है, तो असंतुष्टता नहीं आ सकती है, सदा संतुष्ट रहेंगे। और अगर परिवार में सबको संतुष्ट करना है तो उसकी एक ही छोटी सी विधि, एक मंत्र बाबा ने दिया, बच्चे रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा रखो। अगर संतुष्ट करना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट परिवार से लेना है, तो छोटा है या बड़ा, हर एक को रिगार्ड दो। रिगार्ड दोगे, कई लोग चाहते हैं, कोई थोड़े पुराने हो जाते हैं, अनुभवी होते हैं, सेवाधारी होते हैं, तो समझते हैं सब कम से कम रिगार्ड से, प्यार से बात तो करें, ओम शांति तो करें। लेकिन बाबा उसकी विधि कई बार बता चुका है कि रिगार्ड अथवा रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, आप देना सीख जाओ, पहले दो। आप दोगे, आप ओम शांति सामने से करोगे, तो दूसरे को झुकना ही पड़ेगा। तो युक्तियां बाबा ने, विधियां हम सबको सब प्रकार की सुनाई हैं। अगर एक लिस्ट निकालो तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी माला बन जाएगी। ये विधियां हैं, ये सिद्धियां हैं, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। तो मैं आज जब सोच रहा था, हमने कहा इतनी विधियां बाबा ने बताई। जैसे आज आप कहो कि मन को कंट्रोल कैसे करूं, बहुत चंचल है, कर्म इंद्रियां शांत नहीं होती, शीतल नहीं होती, वृत्तियां बहुत चंचल हैं, तो वृत्तियों की चंचलता को समाप्त करने की विधि नहीं बताई बाबा ने? क्या विधि बताई? बच्चे व्रत ले लो, वृत्तियां चेंज हो जाएंगी, वृत्तियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। हम व्रत नहीं ले रहे हैं, कोई भी व्रत माना दृढ़ता का संकल्प। कोई व्रत लिया जाता ना, जैसे आज उपवास करते हैं, व्रत लेते हैं, आज हम निर्जल रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो उसके पीछे संकल्प को भी नहीं आने देते, समझते हैं संकल्प भी आएगा तो पाप हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ऐसा कोई व्रत लेते हैं कि बाबा आप ही मेरे संसार हो, एक बाबा दूसरा न कोई, हम आपके सिवाय और कोई से भी प्यार नहीं करते, हमारे आप हो, तो एक बाबा का संकल्प व्रत के अंदर आ गया तो व्रतियों की चंचलता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर कर्म इंद्रियां बहुत तूफान लाती हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत परेशान करती हैं, तो बाबा उसकी विधि बताते हैं।
Play.
कर्म इंद्रियों की बात जो अभी सुना रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं मन और कर्म इंद्रियों की दोस्ती इतनी है कि मन के अंदर कोई भी संकल्प उठते हैं तो कर्म इंद्रियां उसको तुरंत एक्ट में आती हैं, साथ देती हैं। इसलिए कर्म इंद्रिय जीत बनने के लिए बाबा ने हम सबको स्वराज्य स्थिति का आसन दिया है। जितना आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन करके रहती है, परहेज से चलती है, उतना कर्म इंद्रियां उसकी कंट्रोल में आ जाती हैं, कहना मानने लगती हैं। तो हम सब जानते हैं कि बाबा ने ऐसी अनेक विधियां अनेक प्रकार से सुनाई हैं। बाबा को राजी करने की विधि क्या है? बाबा को राजी करना है अगर, तो बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चाई बाबा को बहुत पसंद आती है। अगर हमारी दिल अंदर बाहर साफ है, सच्ची है, जो हूँ जैसा हूँ, तो बाबा सहज राजी हो जाता है। तो ये विधि है। अब वरदानों से अपने आप को भरपूर करने की विधि क्या है? वरदान बाबा हम इतना हमें दे रहा है, हम रोज नोट करते हैं, लिखते हैं, अपनी डायरियां भर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो वरदान उतर आए उसकी विधि क्या है? बाबा कहता है वरदान में दान शब्द आता है, दान करो तो वरदान आपके जीवन में आ जाएगा। जैसे कोई चीज किसी को दी जाती है तो उसका रिटर्न प्राप्त होता है, कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। ऐसे ही जो कुछ है, मनसा अगर हमारी शक्तिशाली है, मन हमारा अपने कंट्रोल में है, तो मन से अगर शक्तियों का दान देते हैं तो मनसा हमारी इतनी शुद्ध इतनी कंट्रोल में आ जाती, जो संकल्प करो उसे धोने लगता है। लेकिन शक्तियों का दान दिया है तो, दूसरों को मदद की है, सकाश दी है, शुभ भावना रखी है, तो ये मन कहना मानता है और कंट्रोल में होने के कारण उसे धोने लगता है। ऐसे ही वाणी के द्वारा अगर हमने लोगों को ज्ञान दान दिया है तो बुद्धि एकदम ज्ञानवान बन जाती है, ज्ञान स्वरूप स्थिति सहज बन जाती है। कर्मणा से अगर हमने गुणों का दान दिया है तो गुण हमारे जीवन में अपने आप उतरने लगते हैं। तो ये सब बाबा ने हमें विधियां बताई हैं। और बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे कोई भी चीज जिस चीज का वरदान बाबा से चाहिए वो पहले दूसरों को देना सीखो, दान करो, और दान करते करते आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अगर मान लो हमारी कोई इच्छाएं रह जाती हैं, कोई न कोई इच्छाएं अगर हैं, तो हर इच्छा किसकी पूरी होती है? मन इच्छित फल किसको प्राप्त होता? हम लोगों का एक अनुभव है, मधुबन में संगम पर रहते हुए अनुभव कर रहा हूं कि कोई मन में ऐसी इच्छाएं नहीं रहती जिनकी पूर्ति न हुई हो, संकल्प उठता पूरी हो जाती। उसके पीछे राज क्या होगा? विधि होगी ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो उसकी विधि है कि यज्ञ पिता ने जो यज्ञ रचा है, आप सब सुनो ध्यान से, यज्ञ पिता ने जो यज्ञ रचा है, अगर इस यज्ञ के अंदर आप थोड़ा सा भी सच्चे दिल से सहयोगी बन जाओ, तन से बनो, मन से बनो, धन से बनो, जो शक्ति है जिसके पास जो है, कहने से नहीं करो, कहने से करोगे तो बाबा प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन दिल से अगर बाबा के कार्य को आपने आगे स्वीकार करके, ये मेरा है, ये मेरा यज्ञ है, मेरा बाबा है, तो बाबा के यज्ञ की कोई ने दिल से प्यार से सेवा कर ली तो उसको मन इच्छित फल मिल जाता है, क्योंकि यज्ञ पिता यज्ञ माता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते कि बहुत अच्छा बच्चा है। भले कोई कमी भी हो, कमजोरी भी हो, लेकिन उस कमी कमजोरी को नहीं देखता है, लेकिन उसने दिल से बाबा कहा और बाबा के यज्ञ में अपनी हड्डी लगाई, सेवा की, तन से की, मन से की, धन से की, मनसा की, वाचा की, कर्मणा की, जिस प्रकार से भी की, लेकिन अगर थोड़ा सा भी किया तो बाबा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता। तो वैसे भी कहते हैं आशुतोष भोलानाथ, बाबा को कहते हैं भोलानाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है। कहते हैं भक्ति के अंदर कि शिव बाबा कैसे प्रसन्न होता था, जब गज को हाथी को ग्राह ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया पानी के अंदर, जब उसके पांव को पकड़ लिया तो बेचारा हाथी छूट नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी सूंड में जो पानी भरा था और वो पानी ऐसे ऊपर करके और ऐसे छोड़ने लगा। कहते आज तो उस भगवान प्रसन्न हो गए कि देखो आज जल चढ़ा रहा है हाथी भी, और भाग करके आए और उसको उससे मुक्त करा दिया। कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाता है भोलानाथ है। तो बाबा को प्रसन्न करके किसी भी तरह से बाबा के यज्ञ की प्यार से दिल से स्वीकार करके सेवा कर ली, बाबा प्रसन्न हो जाएगा। हमारी हर मनोकामनाएं जो इच्छा हो सब पूरी हो जाती, जो संकल्प करो पूरा हो जाता। इसलिए मांगना नहीं, कोई भी चीज मांगने से कितनी मिलेगी, बाबा से मांगने की जरूरत नहीं है। सब सिद्धियां ब्राह्मण जीवन में हमारा अधिकार है, लेकिन उन सिद्धियों को प्राप्त करने की विधि में जरा भी निचाई नहीं ऊंचाई नहीं। जैसी विधि बाबा ने बताई है उसको यथार्थ रीति से श्रीमत में। कई बार क्या होता है हम पालन करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ जो साथी हैं कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, संग का रंग लगा देते। संग के रंग की जरूर परहेज करना। अगर ऐसे कमजोर का साथ किया, संशय बुद्धि वाली आत्मा का साथ लिया, तो वो अपने संशय का अपनी कमजोरी का कुछ न कुछ रंग लगाएगा और बुद्धि को भ्रमित कर देगा। इसलिए श्रीमत में मनमत और परमत जरा भी मिक्स न हो। जिस प्रकार से बाबा ने हमें श्रीमत दी है, श्रेष्ठ मत दी है, उस मत के प्रमाण अगर हमारे कर्म और कदम हैं, तो सिद्धि न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान के बच्चों को सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। किसी भी कार्य के लिए आप जाते हो तो उसकी सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करने की विधि क्या है, बहुत पॉजिटिव बहुत सकारात्मक चिंतन करो, बहुत शुद्ध संकल्प से जाओ। ऐसे नहीं सोचो यहाँ हम जाएंगे पता नहीं वो व्यक्ति ठीक है या नहीं, जवाब कैसा देगा, हमने तो सुना है बड़ा गुस्से वाला है, कभी काम ही नहीं करता है, बिना रिश्वत लिए कहेगा कुछ करेगा ही नहीं। अब ये जो भावनाएं हमारे मन के अंदर किसी ने भर दी या हमने कुछ ऐसे नेगेटिव विचार ले लिए और उस विचार के बाद यदि मैं उसके पास गया तो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, क्योंकि जी जैसा बीज बोया वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। इसलिए विधि क्या है, कोई से भी कार्य कराना है, कोई भी काम के लिए जा रहे हैं कि अवश्य करेगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा, मेरा इसमें क्या स्वार्थ है, हम तो विश्व कल्याण के लिए सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो अगर हमारे संकल्पों में बहुत पॉजिटिविटी बहुत अच्छे चिंतन है, सकारात्मक विचार हैं, तो कोई से भी कोई कार्य आप करा सकते हो, असंभव कुछ है ही नहीं। चाहे जितना व्यक्ति कैसा भी हो, किसी का भी काम करे या न करे, बाबा के बच्चों का काम अवश्य करके देगा, लेकिन अंदर की भावनाएं बहुत शुद्ध और सकारात्मक चाहिए। इसलिए बाबा हमारे बीज को परिवर्तन करता है। संकल्प से सेवा की कितनी सारी मूलियां चल रही हैं, संकल्प से सेवा करो, मनसा सेवा करो, अंतिम सेवा यही है। लेकिन संकल्प अगर बहुत साधारण और व्यर्थ चलते हैं कितनी एनर्जी नष्ट होती है। अब ये विधियां समय पर याद आ जाए उसकी विधि क्या है, क्योंकि पता सब है, मूलियां सबको याद रहती हैं, पॉइंट सब दूसरों को, अगर दूसरे के आगे कोई बात आएगी कहेंगे ये करो हो जाएगा, उनको राय देंगे और वो कर भी लेगा, सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन जब मेरे पास कोई वही पेपर आता है तो मन हलचल में आ जाता है, क्या क्यों कैसे के अनेक प्रश्न उठ जाते हैं, बाबा तो ऊपर रहता है वो तो मदद नहीं करता है, ये करता है वो करता है, बहुत सारे साधारण संकल्प ले लेते हैं और फिर सचमुच मदद नहीं मिल पाती। इसलिए बाबा अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर उसकी भी विधि बताता है कि कोई भी कार्य के पहले अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दो, समर्पित करो, जरा भी बुद्धि का अहम न हो, मैं कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनुभवी हूँ, ये जो मैंपन का आवरण है, मैंपन का अहम है, ये सफलता से बहुत दूर ले जाता है। बाबा अपने बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए कहता है बच्चे पहले मैंपन की मैली बुद्धि को समर्पित कर दो, बहुत निरहंकारी निर्माण चित बनो, निमित्त समझो, करावन हार करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक बाबा मेरे साथ न हो, जब तक निरहंकारी और निर्माण चित स्थिति नहीं है, तब तक सफलता नहीं मिलती। इसलिए समर्पणता संपूर्णता का फाउंडेशन है। अगर हम संपूर्ण सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो संपूर्णता के पीछे संपूर्ण समर्पण होना होगा। हर एक ये सोचे कि सचमुच मैंने ऐसे नहीं समर्पित माना, प्रवृत्ति को छोड़ दिया, धंधे को छोड़ दिया, वो समर्पित हैं। लेकिन प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते अगर कोई संपूर्ण ट्रस्टी ईमानदार होकर के अपने घर को चला रहा है, बाबा को जो कहा है उस अनुसार वो करता है, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा, तेरे में कहीं सेंध नहीं लगा देना, ध्यान रखना ये बाबा का है, जरा भी कहीं भी अमानत में ख्यानत न हो, करो सब यूज करो, बाबा दिया है यूज करने के लिए, लेकिन कहीं गलत रास्ते पर नहीं लगा सकते, श्रीमत के विपरीत दिशा की ओर उस मन को नहीं लगा सकते, उस वाणी को नहीं लगा सकते, उस धन को नहीं लगा सकते। तो जब हम तन मन धन को श्रीमत के अनुकूल चलाएंगे, समर्पित कर देंगे बाबा के आगे, और जैसे बाबा ने श्रीमत दी है उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो समय पर ठीक टचिंग आएगी। बाबा की टचिंग के लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। अगर मिक्स बुद्धि है, इधर उधर की बातों को सुन करके प्रभावित हुई है बुद्धि, तो बाबा की टचिंग आएगी। बच्चे ऐसे करो, कई बार बाबा हंसी में कहता है कि मैं तो बच्चों को हलो हलो करता हूं, लेकिन बच्चे ही अपना रिसीवर उतार के रख दे तो मैं क्या करूं। बाबा न मदद करे ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे ने अपनी स्विच को ऑफ कर दिया है, साइलेंस में कर दिया है, आवाज नहीं सुन पा रहा है, तो बाबा क्या करे। इसलिए ध्यान रखना है इस बुद्धि पर, कोई भी आत्मा का, चाहे वो जितनी महान हो, चाहे जितनी अच्छी हो, उसका प्रभाव न पड़े, चाहे वो गलत भी हो, क्योंकि दो ही चीजें हैं जो आत्मा को प्रभावित करती हैं। एक किसी की अच्छाई प्रभावित करती है और कोई की बुराई है, कोई नेगेटिव है, बहुत कुछ उल्टा सीधा मेरे लिए कर रहा है, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है, उससे भी हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं, कुछ न कुछ उसके लिए चिंतन चलना शुरू हो जाता, उल्टा चिंतन भी हिसाब बनाता है। और अगर अच्छाई की तरफ प्रभावित हो गए तो उसकी भी याद बनी रहती है, बार बार वही बुद्धि में घूमता है। तो अच्छाई अथवा बुराई के ऊपर प्रभावित होने वाली बुद्धि समय पर ठीक निर्णय नहीं कर पाती। इसलिए संपूर्ण प्रभावित एक बाबा के ऊपर है, ये बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, अच्छा दर्पण है, बाबा की ऐसे टचिंग आती रहती, ये करो ये करो ये करो ये करो। बहुत अच्छी तरह से इस बात पर आप सब विचार करना कि जो बाबा का कार्य इतने विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं, जरूर कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो अपनी बुद्धि को बहुत सरेंडर करके, स्वच्छ और साफ करके, बाबा की टचिंग को कैच करके प्रैक्टिकल कर रही हैं। हम सभी भी ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अब इस बुद्धि को जरा भी इधर उधर इंगेज नहीं करो, समय है ऐसा, अचानक कई प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं, आएंगी, फट से टचिंग आए, ये करो ये न करो, ये राइट है ये रॉन्ग है, इसके लिए बुद्धि पर कोई भी इधर उधर की बातों का प्रभाव नहीं चाहिए। और तीसरी बात है, स्वच्छता के साथ साथ बुद्धि बहुत लाइट, डबल चाहिए, डबल लाइट। अगर बोझ है, थकी हुई है, बहुत सोचने की आदत है, मान लो थोड़ी सी बात आ गई और हमने सोच सोच करके उसका विस्तार कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, चलो सोचा उससे दिमाग भारी हुआ, और फिर वर्णन कर दिया तो उसके और विचार मिल गए और भारी कर दिया, तो जो थकी हुई बुद्धि है, भारी बुद्धि है, बहुत टेंस में आई हुई है, वो ठीक निर्णय करेगी? उसको टचिंग आएगी बाबा की, ये करो ये करो ये करो? नहीं आएगी। इसलिए ध्यान ये रखना है कि बुद्धि को बहुत लाइट रखो, बहुत हल्का बना लो। बाबा बैठा है, कई बार कहता है मैं बैठा हूं तुम चिंता मत कर, जवाबदार बाबा है, करण करावनहार बाबा है, जब हम सब ने उसको अपना साथी बनाया है, हमारे से वो अलग है ही नहीं, तो हम उसको इतना साथ में रखें, लेकिन साथ किसके रहेगा? बोझ वाले के साथ नहीं रहेगा, व्यर्थ चिंतन वाले के साथ नहीं रहेगा, मेरी दादी जी बहुत प्यार से गुलजार दादी कहती हैं, अरे किसी अच्छे वीआईपी को भी बुला करके बिठाते हो तो उसके लिए भी स्थान को साफ करते हो, स्वच्छ करते हो, और दिलाराम को, भगवान को अपने दिल में बिठाने के लिए दिल कितना साफ चाहिए, कितना स्वच्छ चाहिए। अगर किसी की भी कमियां, किसी के भी अवगुण, कोई भी बातें व्यर्थ की, इधर की उधर की, ये करता वो करता, यहाँ ऐसा वहां वैसा, बहुत विस्तार है इसका। अगर जरा भी इसमें बुद्धि के अंदर, दिल के अंदर, दिमाग के अंदर गंदगी है तो बाबा वहां कंबाइन नहीं रहता है, दूर हो जाता है। बाबा को भी बहुत प्योर बच्चे चाहिए, शुद्ध बच्चे चाहिए, और शुद्ध बहुत विचार अच्छे हैं, सरल नेचर वाले हैं। तो सरल नेचर, सरलता का आधार क्या है? सरलता का वरदान मिल जाए उसका आधार क्या है? हाँ जी, स्वयं को मोल्ड कर लेना। जहां हाँ जी करने की आदत है, स्वयं को मोल्ड करने की आदत है, वहां नेचुरल सरलता जन्म से अधिकार हो जाती। और सरल चित नेचर है, भोली नहीं, भोलापन नुकसान कर देता। सरलता एक बहुत बड़ा गुण है और भोलापन कहीं माया का गोला लगा देता है। इसलिए बाबा की ऐसी बातें जो हैं ध्यान पर रखनी है कि बाबा कहता है जहाँ सरलता है वहाँ सहनशीलता भी है, वहाँ समाने की शक्ति भी है। संगठन में रहना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो एक स्लोगन याद रखना, जहाँ रहना है वहाँ सहना है, सहन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं रहेंगे। इसलिए जिस स्थान पर हम अपने आप को सफलता प्राप्त करके रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, वहां कोई भी नीचे ऊपर बात हो, सहन को संभालो। अगर उसको फैला दिया, उसका वर्णन कर दिया, तो वहां उस स्थान पर टिक नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने सब विधियां सुनाई हैं और इन विधियों से आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बनती जाए। सर्व गुण इसके आधार से आते जाते हैं, चाहे आप निर्माणता का गुण, निरहंकारिता का गुण, धैर्यता का गुण, उसके पीछे कुछ न कुछ विधि है। वो विधि तभी जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो वो अपने आप नेचुरल गुण हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई कहे मेरे को अंदर बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, मैं बहुत उत्तेजित हो जाता हूं, तो कई बार कहते हैं जब उत्तेजना आती है तो थोड़ा सा बाबा एक पोटका देता है, सुना होगा मुरली के अंदर, कि बच्चे जब गुस्सा आए तो मुंह में मुहलरा डाल लो। सिंधी में एक शब्द है मुहलरा, माना मुंह में कुछ रख लो तो बोलोगे नहीं। एक गुस्सा कर रहा है, दूसरा अगर चुप हो जाएगा तो गुस्से का वातावरण तो नहीं बनेगा, नहीं तो भूत भूत से लड़ जाएगा। एक में गुस्सा आया और आपने उसका जवाब दे दिया, दोनों में टकराव हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए बाबा ने उसकी विधि बताई है कि अगर कोई गुस्सा आपके सामने कर रहा है तो थोड़े समय के लिए चुप हो जाओ, सुन लो क्या फर्क पड़ता है, छोटे नहीं हो जाओगे। चुप लिया, शांत हो गए, थोड़ी देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा। कई बार हमको कोई ऐसे उल्टे सीधे पत्र लिखते हैं बड़ों के लिए, हमारे लिए जोश आता है ये जवाब दे दूं। मान लो उसी समय मैंने वो जवाब दे दिया तो वो बात विरोध में और बढ़ेगी या घटेगी? धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी। हमने एक बात कही, उसने दो बातें लिख दिया। इसलिए बाबा कहता चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा, सिद्ध नहीं करो। अगर अच्छे आप सत्य हो तो सत्यता को कभी सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्यता तो अपने आप में सिद्ध है, और जो सिद्ध करता है वो जरूर जिद करेगा ही कहीं ना कहीं से। इसलिए जो बाबा की ऐसी विधियां हैं, ये भी विधि है कि अगर सत्य हो तो सत्यता माना नम्रता, सत्यता माना झुकना, सत्यता कभी भी ऐसे नहीं मैं सिद्ध सत्य हूं ना इसलिए मुझे तो सहन नहीं होता, जो आता मैं बोल देता हूं, मैं सहन नहीं कर सकता। तो एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मुरली चलाई थी, चलो उसने तो झूठ बोला और तुमने उस झूठ को सहन नहीं कर पाया, गुस्सा कर लिया, तो झूठ और गुस्सा दोनों में सबसे बड़ा पाप किसका है, झूठ बोलने वाले का या गुस्सा करने वाले का? इसलिए अगर दोनों ही गलत हो तो दोनों को ही सजा मिलेगी। इसलिए अगर कोई झूठ है तो झूठ को झूठ कह करके उसके ऊपर गुस्सा करना, क्यों झूठ बोलता है मैं देख लूंगा, तो बाबा कहता वहां तुम टकराव पैदा कर रहे हो, वहां चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक हो जाएगा। शुभ भावना रखो। अगर आप उसको बदलना ही चाहते हो तो विधि है शुभ चिंतक की स्थिति, बहुत शुभ भावना है, ठीक हो जाएगा। तो ऐसी जो बाबा की विधियां हैं, समय प्रमाण अगर हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छी सफलताएं हमारे सामने घूमती है। ऐसे लगता है कोई कार्य के लिए कोई भी संकल्प उठता हो जाता, कोई भी बोल बोल दो सिद्ध हो जाता, कोई भी कर्म करने चलो ऐसे लगता है सफलता तो हुई पड़ी है। नहीं होगी प्रश्न नहीं है। सदा प्रसन्न चित्त रहने की विधि क्या है? सदा प्रसन्न चित्त रहने की विधि क्या है? प्रश्नों से परे चले जाओ। अगर प्रश्नों में उलझ गए तो प्रसन्नता गायब हो जाएगी। क्यों, क्या, कैसे की अनेक प्रकार की उलझन है और बाबा कहता है ये तो बहुत बड़ी क्यू है, एक उठेगी दूसरी, एक प्रश्न पूरा होगा दूसरा आ जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। कई बार कई प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न हम भी उठाते, दूसरे भी उठाते, बहुत सारे पत्र इधर उधर के उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहते। अब प्रश्न पूछने वालों को कहां तक संतुष्ट किया जा सकेगा। बाबा इतना समय से पढ़ा रहा है, मैं तो कहता हूं 33-34 साल साकार में बाबा ने पढ़ाया, 47-48 साल से अव्यक्त रूप से बाबा पढ़ा रहा है। इतनी सारी विधियां, इतनी सारी युक्तियां, इतने सारे श्रीमत बाबा ने दी और फिर भी कोई बच्चे प्रश्नों में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ उलझ रहा है, माना उसने मुरलियों की ठीक स्टडी नहीं की है। अगर मुरली की ठीक स्टडी है, अच्छी तरह से पढ़ाई की है, सिर्फ सुना नहीं है लेकिन उसके गहराई में गया है, तो कोई भी प्रकार का उलझन वाला प्रश्न मन में उठ ही नहीं सकता। जानकारी के लिए पूछना अलग चीज है, जानकारी के लिए प्रश्न पूछना एक अच्छा चिंतन है, लेकिन उलझ करके ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें लोग लिख रहे हैं, लिखते हैं, तो मैं कहता हूं क्यों उलझते हो, अपने मन को उलझाते हो, बाबा की याद कैसे रहेगी। अगर बाबा की याद रखनी है अंदर मन में दिल में, निरंतर योगी सहज योगी बनना है तो उसका आधार क्या है, उसकी विधि क्या है? सहज योगी की विधि क्या है? सहज एक सेकंड में बैठे हो बाबा के पास चले गए, उसकी विधि मन की प्रसन्नता, मन की खुशी और हल्कापन, ये पंख हैं। अगर बहुत आत्मा हल्की है, खुश रहती है सदा, आप बैठोगे बाबा की याद में फट से बाबा के पास पहुंच जाओगे। अगर बोझ है, इधर उधर के संकल्प हैं, बहुत प्रश्न है, कुछ न कुछ भारीपन है, कुछ हिसाब किताब है, तो बैठे रहो बाबा की याद में, योग लगेगा ही नहीं, मजा आएगा ही नहीं। इसलिए बहुत हल्के और खुशी के संकल्प इमर्ज करो। कहते खुशी दो तो खुशी मिलेगी, दुआएं दो दुआएं मिलेंगी। क्या आज विधि बताई बाबा ने दुआएं लेने की? अरे बच्चे बैलेंस से चलो, ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। ब्लेसिंग्स चाहते हैं, दुआएं सबकी चाहते हैं, लेकिन हमारा बैलेंस नीचे ऊपर है, तो बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती हैं। सब दुआएं देते हैं, हाँ जी करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, बाबा दुआएं देता है, तो बाबा की दुआएं मिले, परिवार की दुआएं मिले, हर बात में दुआएं मिले, उसका आधार है बैलेंस में जीवन। जितना हम बैलेंस से चलेंगे बाबा प्रसन्न है, ब्लेसिंग्स देता रहेगा, बाबा की दुआएं हमारे ऊपर छत्र छाया बन जाएंगी। तो ऐसी बाबा की विधियों को अपने पास जरूर नोट करना, और अगर बुद्धि शांत है, धैर्यवत है, शुद्ध है, स्वच्छ है और समर्पित है, तो समय पर टचिंग आएगी, ये करो, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये नहीं करना, ये करना, ठीक है। ओम शांति। सभी 3 मिनट कल बाबा आएंगे, आप आवाहन करेंगे बाबा का सभी अमृत वेले से ही, तो अभी से ही बाबा के प्यार में समा जाना और ध्यान रखना कि भले 20-25 हजार लोग हैं लेकिन जरा भी आवाज नहीं। अव्यक्त वतन से बाबा का आवाहन करके अव्यक्त अनुभव करना है, मिलन मनाना है, तो अव्यक्त स्थिति ही अव्यक्त मिलन का आधार है। तो अभी से सब अव्यक्त स्थिति बना के जाना, यहाँ बैठो 3 मिनट साइलेंस में और शक्ति भर के फिर मन का मौन लेकर के उठना।